रहते थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जो प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरयाह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के विजय प्रस्थान के बारे में, और अब तक हमने जकरयाह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 से 9 पद तक का अध्ययन किया है। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 उसके 10 पद से लेकर 10 अध्याय के 1 पद तक अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है, ताकि हम एकजुट होकर आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठ करके एक साथ कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक आपके वचन को समझ सके, जीवन में ग्रहण करने पाए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी संगति से आप ही उनकी रक्षा करें। और इस घड़ी हमारी विनती है, जो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, बीमार हैं, निराश हैं, चिंता और तनाव में हैं, जॉब की तलाश में हैं, प्रभु आप उन पर दया दृष्टि करें, उनके जीवन से भी आप बोले और बातचीत करें, उनके जीवन की हर एक आवश्यकताओं को आप ही पूरा करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे हैं कि जकरयाह इस पुस्तक में प्रभु यीशु के आगमन की भविष्यवाणी करता है, और सुसमाचार में हमने इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखा है कि प्रभु यीशु जब गधे के बच्चे पर बैठकर फसा के पर्व के सप्ताह यरूशलेम में आए थे, तब यरूशलेम के निवासी जय जयकार होसन्ना पुकार रहे थे। निसंदेह प्रभु यीशु दीन और धर्मी था। लोगों को भ्रम था कि वह राज करने के लिए आ रहा है और इसराइल को रोम के अधिकार से छुड़ाएगा, परंतु वह संपूर्ण मानव जाति को पाप के अधिकार से छुड़ाने के लिए आया था। और सच तो यह है कि यरूशलेम प्रवेश वास्तव में उसका प्रस्थान था, अर्थात उसकी मृत्यु। प्रभु यीशु जब दूसरी बार आएगा, तब वह विश्व शांति स्थापित करेगा। अतः परमेश्वर कहता है, जकरयाह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 10 पद में, मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। लिखा है एप्रेम। एप्रेम से तात्पर्य है इसराइल का उत्तरी राज्य और यरूशलेम दक्षिणी राज्य का प्रतीक है। उत्तरी राज्य को अश्शूर दास बनाकर अर्थात गुलाम बनाकर ले गए थे और दक्षिणी राज्य को बेबीलोन ने बंधुआई में ले लिया था। वास्तव में ये दोनों राज्य परमेश्वर की प्रजा इसराइल ही हैं और प्रभु राज में फिर से एक देश होंगे। लिखा है मैं रथ और घोड़े और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, अर्थात यहूदियों को तब हथियारों की आवश्यकता नहीं होगी। कहता है वह जाति जाति से शांति की बात कहेगा। मेरे मित्रों, जब तक प्रभु यीशु अपना राज्य स्थापित नहीं करेगा तब तक विश्व शांति स्थापित नहीं हो सकती है। नेताओं के मुंह से शांति की बात सुनकर मुझे कपकपी छूटती है, क्योंकि वे अनजान हैं कि विश्व शांति लाना उनके वश में नहीं है। मैं यह तो मानता हूं कि हमारे पास सेना होना चाहिए, परंतु हम शांति स्थापित कर पाए यह मेरे विचार में संभव नहीं है। हमारे पास इसके उदाहरण हैं, विश्व युद्ध तथा अन्य अनेक युद्ध। शांति केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही संभव है। अतः हमें शांति स्थापित करने की अपेक्षा इस अनर्थकारी संसार में अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना है। हम वैश्विक भाईचारे की बातें करते हैं, परंतु यह बाइबल आधारित विचार नहीं है। भाईचारा उन्हीं में संभव है जो प्रभु यीशु के लहू से उद्धार प्राप्त हैं। मेरे मित्रों, मैं जानता हूं कि यह प्रिय विचार नहीं है, परंतु मैंने देखा है कि परमेश्वर मुझे कई प्रकार की बीमारियों से मुक्त करने के लिए दवा देकर मेरे शरीर को काटता है। मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए केवल यही एक मार्ग था, और इसी प्रकार विश्व शांति केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही संभव है, चाहे यह विचार प्रिय हो या अप्रिय, आप पसंद करें या ना करें। जकर्या 9 अध्याय के 11 पद में लिखा है, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गढ़े में से उबार लिया है। लिखा है तू भी सुन, ये पीड़ित इसराइली थे जो स्वदेश लौटकर आए हुए थे। मैं अधिक यह कर सकता हूं कि इस पद का आत्मिक अर्थ निर्धारण करूं। मनुष्य के उद्धार का एकमात्र साधन वाचा का लहू है, जो नए नियम का लहू अर्थात प्रभु यीशु मसीह का लहू है। मनुष्य स्वतंत्रता और मुक्ति की बातें तो करता है, परंतु जानता नहीं कि वह बंदी बनाया गया है, पाप में फंसा हुआ है। रोमियो के पत्र 7 अध्याय के 14 पद के अनुसार वह पाप में बिका हुआ है, वह पाप का दास है। मुझे अनेक नशा करने वालों के पत्र मिलते हैं कि नशे से मुक्ति पा चुके हैं। कैसे? मेरे मित्रों, केवल प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, उसकी ओर फिरने से। केवल वही बंदियों को अथाह कुंड से भी बचा सकता है, निकाल सकता है, मुक्ति दे सकता है। जकर्या 9 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पार तीर के समान एप्रेम को लगाया है। मैं सियोन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। कहता है, मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर। इस समय हम प्रभु राज के युग संबंधित भविष्यवाणी को पढ़ रहे हैं। संसार की सब जातियां उसे दंडवंत करेंगी। मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु फिर आएगा तब वास्तव में विजय यात्रा होगा। जकर्याह 9 उसके 14 और 15 पद में आगे लिखा हुआ है, तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होके चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव रखेंगे और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भरे जाएंगे। मेरे विचार में यह प्रभु यीशु के आने तक का परिदृश्य है। मनुष्य द्वारा इस पृथ्वी पर प्रभु राज का सा वातावरण नहीं बनेगा। जकर्या 9 उसके 16 पद में लिखा है, उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। लिखा है उस समय। जकर्याह इस उक्ति का प्रयोग अध्याय 12 में अनेक बार करेगा। यह यहोवा के दिन के विषय में है जिसका आरंभ उस समय होगा जब कलीसिया इस पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। वह दिन महाक्लेश के आरंभ का दिन होगा, महासताव का दिन होगा और इसका अंत 7 साल के क्लेश के समय या बाद प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर होगा। उस समय प्रभु यीशु अपना 1000 वर्ष राज्य आरंभ करेगा। यहां लिखा है मुकुटमणि ठहर के या मुकुट के चमकीले नगीनों के समान। मलाकी कहता है कि उस समय परमेश्वर अपने नगीने तैयार करेगा। मलाकी की पुस्तक 3:16 में लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मेरे मित्रों, यह इसराइल के भक्तों और अन्य जातियों के विषय में है परंतु इसमें कलीसिया नहीं है जिसे मत्ती रचित सुसमाचार 13:46 में बहुमूल्य मोती कहा गया है। प्रभु यीशु ने इस मोती के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाया था। जकर्याह 9 के 17 पद में लिखा है, उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी, उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हृष्ट पुष्ट हो जाएंगी। लिखा है उसका क्या ही कुशल और क्या ही उसकी शोभा होगी। यह उसकी शोभा है जो सिकंदर महान की तुलना में है। सिकंदर तो भला नहीं था, वह निर्दयी था, पाशविक था और घमंडी भी था। प्रभु यीशु दीन और विनम्र तथा भलाई में महान है, सुंदरता में बेजोड़ है। यशाया के पुस्तक 53:2 में लिखा है, उसके प्रथम आगमन की दशा जहां पर व्यक्त की गई है, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, क्योंकि क्रूस का दंड एक भयानक अवस्था थी, परंतु जब वह फिर आएगा तब वह बहुत आकर्षक होगा। हम बहुत लोगों को आकर्षक कहते हैं परंतु उससे अधिक आकर्षक और कोई भी नहीं है। वह अपना आकर्षक अपने लोगों को भी देता है। लिखा है, उसके जवान आम खाकर और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हृष्टपुष्ट हो जाएंगी। नया दाख मधु नशा नहीं करता है। यहां भोजन वस्तुओं की बहुतायत का वर्णन किया जा रहा है। इस पृथ्वी पर प्रभु राज के समय न तो अकाल पड़ेगा और न ही ऊर्जा की कमी होगी। वह समय समृद्धि का आनंददायक समय होगा। यह प्रभु राज का एक विशेष लक्षण होगा। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहां पर अध्याय 9 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को बनाए रखने के लिए अध्याय 10 को देखेंगे। तो आइए हम इस अध्याय के विषय को देखें। विषय है यहूदा और इसराइल का तितर बितर होना और पुनः एकत्र होना। अध्याय 9 में हमने देखा था कि भविष्य में परमेश्वर इसराइल और यहूदा का उद्धार करके उन्हें इस संसार की सब जातियों के लिए याजक बनाएगा। टीकाकारों में अधिकांश का सोचना है कि अध्याय 9 और 10 की विषय वस्तु एक ही है, परंतु कुछ विचारकों के अनुसार अध्याय 10 का पद एक ही अध्याय 9 के साथ है, शेष अध्याय का विषय अलग है। मैं इस मत का समर्थन करता हूं। तो आइए हम पढ़ें जकर्याह 10 अध्याय उसका एक पद। लिखा है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। मेरे प्रियो, जैसा हमने अभी अभी देखा है कि यह पद वास्तव में अध्याय 9 के साथ है, क्योंकि इसमें प्रभु राज के युग में इस पृथ्वी की समृद्धि की चर्चा की गई है। यहां वर्षा का अर्थ वर्षा ही है। परमेश्वर ने सांसारिक इसराइल को सांसारिक आशीषें देने की प्रतिज्ञा की है, जबकि कलिसिया को उसने सांसारिक की अपेक्षा आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा दी है। इसराइल के लिए पतझड़, बसंत और वर्षा का महान महत्व है, जिसके द्वारा वह स्थान अदन की वाटिका बन जाएगा। परंतु आज इसके वह विपरीत है, क्योंकि इसराइल में मनुष्यों के साथ संपूर्ण भूमि भी परमेश्वर के श्राप के अधीन है। परमेश्वर का एक कठोर दंड है वर्षा की कमी। मेरे विचार में अरबों के अतिरिक्त इसराइल की एक और महान समस्या पानी की है। इसका सबसे आसान समाधान है, वे परमेश्वर की ओर फिरें और उसकी आशीषों को प्राप्त करें। परंतु वे परमेश्वर के निकट नहीं हैं और उन्हें वर्षा नहीं मिल रही है। मुझे कहा गया है कि वहां उत्तरकालीन वर्षा होने लगी है, परंतु आप वहां ग्रीष्म ऋतु में जाएं तो उनके बागानों को जल से वंचित पाएंगे। उन्हें बहुत पानी की आवश्यकता पड़ती है। उनके पास खेती की भूमि की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। उत्तरकालीन वर्षा मार्च और अप्रैल में आती है, यद्यपि वहां इस समय वर्षा आती है, परंतु उतनी नहीं जितनी इस पद में व्यक्त की गई है। प्रभु राज में परमेश्वर उन्हें इतनी वर्षा देगा कि उनके मवेशियों के लिए बहुत हरियाली होगी और उनके बगीचों तथा वनों के लिए भी पर्याप्त जल होगा। यह पद वास्तविक वर्षा के बारे में कह रहा है। दूसरी ओर वर्षा आत्मिक स्फूर्ति का प्रतीक भी है, जैसा अन्य पदों में दर्शाया गया है। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 28 पद में लिखा है कि पवित्र आत्मा का उंडेला जाना भी आत्मिक जीवन में वैसा ही होगा जैसा प्राकृतिक वर्षा द्वारा भूमि को तृप्ति प्राप्त होने में होता है। योएल और जकरिया की भविष्यवाणियां सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज से संबंधित हैं। उस युग में पवित्र आत्मा भी उंडेला जाएगा, अतः यहां वर्षा के दो गुना अर्थ हो सकते हैं। इसराइल के दल का दंड। मेरे मित्रों, पद दो से फिर परमेश्वर के दंड की चर्चा आरंभ होती है। परमेश्वर उन्हें शक्तिशाली बनाने और उन्हें प्रभु राज में लाने की चर्चा तो करता है, परंतु उनमें कुछ बुराइयां हैं और वह इसराइल की भूल पर उंगली उठाता है, क्योंकि वे मूर्ति पूजा कर रहे थे। इसे हम अगले अध्ययन में देखेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय भी समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ उठाया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप उसके निकटता में बने रहें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मुश्किल।